भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अमृत वाणी है। यह संवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में हुआ। यह संवाद आज से 5000 साल वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामी स्थान पर हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन से जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए संवाद से हमारा क्या रिलेशन है। इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कुरुक्षेत्र के दरमियान हुए युद्ध जिसमें श्रीमद् भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या था। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा कि इस युद्ध से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से यह युद्ध निश्चित हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देना अनिवार्य हो गया। 5000 साल पहले हस्तिनापुर में एक राजा शासन करते थे। इनका नाम था विचित्र वीर्य और उनका देहांत हो गया। तब उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडव। धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से ही अंधा था, हालांकि वो बड़ा पुत्र था लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से वो राज्यभार नहीं संभाल सकता, इसलिए राज्य का भार उसके छोटे पुत्र पांडव को दिया गया। पांडव की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र जो कि पांडवों के नाम से विख्यात थे, वही नियमानुसार राज्य के उत्तरदायी बने। लेकिन क्योंकि पांडव अभी छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने स्वयं ही राज्य का भार संभालना शुरू कर दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। धृतराष्ट्र राज कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये पांडवों और कौरव बड़े होते गए तो फिर उन्होंने संपूर्ण शिक्षा द्रोणाचार्य से हासिल की, और जब पूर्ण शिक्षा उन्होंने हासिल कर ली, जो कौरव थे वो सदैव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। दुर्योधन इत्यादि जो होते थे वो हमेशा पांडव धर्म के अनुसार कार्य करते थे और कौरव सदैव उनके साथ ईर्ष्या करते थे। पांडव संपूर्ण राज नहीं लेना चाहते थे, अपने भाइयों के साथ मिलकर राज करना चाहते थे, क्योंकि पांडवों ने ये निश्चय किया कि हम अपने चचेरे भाइयों के साथ अपने राज्य को बांट देंगे। इसलिए हस्तिनापुर के 2 विभाग कर दिए गए और पांडवों और कौरवों में बांट दिया गया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ एक मिला जिसमें वो राज्य करने लगे। हालांकि इंद्रप्रस्थ पहले खांडवप्रस्थ था और उसमें कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था। हस्तिनापुर कौरवों को मिला जो कि बहुत ही बड़ी राजधानी थी, लेकिन दुर्योधन जो कि कौरवों का बड़ा भाई था वो अपने भाग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, वो सारे राज्य को हड़पना चाहता था और वो पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। पांडवों को मारने के लिए उसने कई षड्यंत्र रचे लेकिन वो सदैव असफल रहता था। फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, दुर्योधन का मामा शकुनी जो कि जुआ खेलता था और उसमें बहुत छल कपट करता था, तो उन्होंने कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया जिसमें कौरवों ने पांडवों की संपूर्ण संपत्ति जो भी थी वो सब जीत ली और उनके पास पांडवों के पास अभी कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा वो जुआ में हार गए। और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, यानी कि 12 वर्ष तक उन्हें वन में रहना पड़ेगा और 1 साल तक छुप के रहना पड़ेगा, उसके बाद जब वो आएंगे तो उनको उनका राज दे दिया जाएगा। अब पांडवों ने 12 साल तक वनवास भोगा और 1 साल तक अज्ञातवास में रहे, किसी को नहीं दिखे, और जब वो वापस अपना राज्य लेने के लिए कौरवों के पास आए तो उन्होंने, दुर्योधन ने बिल्कुल इनकार कर दिया, बोला राज्य तो का मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी उन्हें नहीं दे सकता। पांडवों ने बोला कि चलो ठीक है, आप हमें हमारा पूरा राज नहीं दो लेकिन 5 गांव दे दो। बोला 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि आपको नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अच्छे तरीके से निपटाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि दुर्योधन किसी और चीज से मान ही नहीं रहा था और पांडवों के साथ किसी सूरत में भी संधि करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कुरुक्षेत्र के महाभारत का युद्ध जो है वो अनिवार्य हो गया। युद्ध की तैयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के साथ सहायता मांगने गए। जो भी भगवान के पास सहायता मांगने आते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए हुए किसी भी मनुष्य की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन। एक बार जो कृष्ण की शरण में आ जाता है वो अवश्य कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत ही विशाल सेना को एक ओर और खुद को मार्गदर्शन के तौर पर दूसरी ओर रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुन लिया, जबकि अर्जुन सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध करना, या फिर युद्ध भूमि को छोड़ दे और दुष्ट दुर्योधन को ही राज्य पर शासन करने के का अधिकार दे दे। अर्जुन अपने आप को इस दुविधा से पार निकलने के लिए असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से पार लगाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वास्तव में भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह पवित्र दिव्य ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है और यह हमें बताया है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करें, किस तरह से अपने जीवन में आई हुई मुश्किलों को फेस करें, किस तरह से अपने समस्त दुविधाओं को दूर करें और जीवन का लक्ष्य क्या है, वह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बताया है। इसका मतलब ये है कि भगवान हमें बताते हैं इस भगवद गीता में कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और एटलीस्ट हमें कहाँ तक जाना है, हर चीज भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताई है। तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के विषय में कुछ बात करेंगे। गीता महात्म्य के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है। जिसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन की चिंताओं और समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। भय शोक आदि वर्जिता, अर्थात वो अपने समस्त जीवन के सारे भय से, सारे दुखों से निवृत्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साफ साफ लिखा है, नैव संति ही पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। अगर आप भगवत गीता को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से पढ़ेंगे तो संपूर्ण पुराने जन्मों के जितने भी कर्मों दुष्कर्मों के दुष्परिणाम होंगे उनका क्षय हो जाएगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अंश 18.66 में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपने शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। चूंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान से मुख से निकली है, अतएव किमन्य शास्त्र विस्तर है, किसी अन्य शास्त्र किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता रह जाती है। उसे केवल श्रीमद् भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करनी चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना बहुत बहुत कठिन है, संभव ही नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि कलयुग में लोगों के पास न आयु है न बुद्धि है और न ही वो आध्यात्मिकता में इतने ज्यादा तीव्र हैं। साफ साफ कहा जाता है श्रीमद् भागवतम 1.1.9 में, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो इतना यदि हमारी आयु इतनी कम है, दुर्भाग्य इतना है, मंदमती है, जजमेंट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते अलग अलग शास्त्रों को, तो फिर उनको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं। साफ साफ लिखा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, वैक पढ़ो, बस श्रीमद् भगवद गीता ही आप पढ़ने के लिए एकमात्र शास्त्र है, दूसरों शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है। परंतु और उन सारे शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल एक ही पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसीलिए कहा जाता है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो श्रीमद् भगवद गीता के अमृत का पान करता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। जैसे गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों चरण कमलों से निकली है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली और गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख में तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता गंगा जल की उपेक्षा कई अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय दुग्ध का पान कर रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत ही उत्सुक हैं। अतएव शास्त्र कहता है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण देवकी के पुत्र। एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र एक ही प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इसके अतिरिक्त और मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ना कोई तरीका है और ना ही कोई आदेश, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य वाणी है और हम इस भौतिक धरातल पर रहते हैं। अब इस भौतिक धरातल पर रहते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य आध्यात्मिक शब्दों को ना समझ सकते हैं और ना ही उनको फॉलो करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होती है। तो उस आध्यात्मिक शब्दों को ग्रहण करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और उस वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है उनसे जिनके पास है। तो फिर भगवद गीता पढ़ने से पहले या कोई भी वैदिक साहित्य पढ़ने से पहले हमें मंगलाचरण करना होता है, जिससे हम मंगलाचरण करते हैं तो हम जो जिस जिसका मंगलाचरण जिस जिसका श्लोक उच्चारण करते हैं ना, जैसे गुरु महाराज का, उसके बाद अना महाप्रभु इत्यादि, सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी इत्यादि, जिस जिसका भी हम मंगलाचरण में नाम उच्चारण करते हैं वो हम पर कृपा हमें प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम उस अध्ययन को जो हम अध्ययन कर रहे होते हैं और जो पढ़ रहे होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके बाद मंगलाचरण की ऑडियो भी है, वो कृपा करके आप पढ़ लीजिएगा और कल हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यह मंगलाचरण आपकी श्रीमद् भगवद गीता के पेज नंबर 1 पे, जहाँ पर भूमिका लिखा है ना, वहां पर लिखा हुआ है। आप लोग देख देख के पढ़िए और उस ऑडियो को सुन लीजिए, और ये मंगलाचरण अब हर श्लोक के साथ पहले हम करेंगे, उसके बाद ही श्लोक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।